अगली सूरत है सूरत आल इमरान। थोड़ा सा इसका पिछले हिस्से से रफ। सूरत बकरा में हमने बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी, जो माजी के मुसलमान थे। उसके बाद जो दूसरा गिरोह सामने आता है वो नसारा का है। सूरत आल इमरान जो है ये बहुत ही खूबसूरत सूरत है, दूसरी तवील सूरत है कुरान की। जिस तरह हमने सूरत बकरा के अंदर बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी, तो बनी इसराइल के आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। याद रखिए कि हजरत याकूब के बेटों से ये नस्ल शुरू हुई थी। ये बहुत अहम बातें हैं जो शायद आपने कभी इस तरह रब में ना सुनी हो पहले से। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना ओवरऑल, इस तरह बनी इसराइल जो अपने दौर का बहुत बड़ा गिरोह था और सबसे ज्यादा नबी उसी कौम में आए थे, उनके आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। यानी हजरत ईसा और नबी सल्लम में बहुत सारी मुमासलतें हैं, जिसमें ये एक बहुत बड़ी मुमासलत है। नसारा ने हजरत ईसा के साथ अपने आप को जोड़ा, लेकिन उनके बारे में बाद के अदवार में कुछ मिसकॉन्सेप्शन हुई। जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, लोग उनको नबी मानते थे, लेकिन उनके दुनिया से उठाए जाने, जो आज भी हमारे ईमान के मुताबिक जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं और वो वापस आएंगे क़यामत के करीब, ये सब कुछ हम सूरत मायदा में इंशाल्लाह आयतों की रोशनी में पढ़ेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे वो एग्जेजुरेशन का शिकार हो गए और उन्होंने इस तरह से चंद गलत फहमियों की बुनियाद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी कहने की बजाय अल्लाह का बेटा का, यानी जो उनकी किताबों में बात थी वो नबीयुल्लाह थी, नून को बा को नून कर दिया उनके चंद मजहबी रहनुमाओं ने, तो नबी जो था वो बनीयुल्लाह बन गया। इस तरह की बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन हुई थी। हम इस सूरत में जो चीज़ देखेंगे वो पहली बात जिसे आप सब खुश हो जाएंगे, खिल जाएंगे, और वो क्या कि इस पूरी सूरत में एक भी हुक्म नहीं है, नो डूज, आपको कोई अमल नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, दुआओं से भरी हुई सूरत है। तीसरी बात, किस्सों कहानियों से भरी हुई सूरत है। हम इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ेंगे। कुरान पाक में नबियों की सीरत महफूज है, जैसे सूरत कसस में और आगे सूरत तौहा में देखते हैं तो हजरत मूसा की सीरत है, नबी सल्लम की अपनी सीरत अलग महफूज है। लेकिन चूंकि पिछले अंबिया की सीरत हमें और कहीं से मिल नहीं सकती थी और आज के दौर में बाइबल में तो उसमें बहुत सारी खुराफात शामिल हो गई, तो इसको हम पढ़ेंगे। और आले इमरान का लफ्ज भी असल में हजरत ईसा के नाना की तरफ है, इमरान उनके नाना थे। उनकी नानी का नाम हन्ना था, जिसका जिक्र आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और उनकी माँ मरियम। ये सारी कहानी है इसमें, जकरिया याह्या, ये पूरी फैमिली से मिलेंगे। उम्मत मुस्लिमा इसको क्यों पढ़े, मैं और आप क्यों पढ़े, हम देखेंगे कि अल्लाह सुबहान तआला ने इस सूरत के अंदर कितने खूबसूरत तरीके से आज हमें दूसरों को इस्लाम के दलाइल देने सिखा दिए। शुरू में हम देखेंगे वफद नजरान आया था, उसके साथ कैसे हुआ, यानी हजरत ईसा खुदा नहीं हो सकते, उसके अमली दलाइल के साथ ये सूरत शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम। मुमासलत, सूरत बकरा और सूरत आले इमरान में बहुत सारी मुमासलत मींस सिमिलेशंस भी हैं, और इन दोनों को हदीस में अल ज़हरवैन कहा गया, दो चमकती हुई सूरतें। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इन दोनों सूरतों को पढ़ा करो, जादूगर और बातिल परस्त इसकी ताब नहीं लाते। यानी अगर आपको शक है किसी असर का, किसी सुस्ती का, नकाहत का, जादू टूने का, आप इन दोनों सूरतों को पढ़ें। फिर आप देखिए वो भी सूरत अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही है, तो ये भी अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही है। सूरत बकरा में यहूद का तस्करा है, तो आले इमरान में नसारा का तस्करा। उधर शरीयत के इतने ज्यादा अहकाम थे, इधर शरीयत का कोई हुक्म नहीं है। इसका भी इंजाम दुआ से भी हमने पढ़ा सूरत बकरा का, तो सूरत आले इमरान का इंजाम भी दुआ से होगा। और बदर से उहद तक के दौर के बीच में ये सूरतें नाजिल हुई थी, इसको सामने रखेंगे तो आप नबी सल्लम के नाते से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। फिर दूसरी बात देखिए कि अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो निजामे कायनात को संभाले हुए है। इस आयत के बारे में आता है कि इसमें इसमें आजम है। कुरान पाक की तीन आयात, आयतुल कुर्सी और इस सूरत की ये आयत, और इसी तरह से सूरत तौहा की चंद आयात है, जिन तीनों के बारे में हदीस हमें मिलती है कि इनके अंदर इसमें आजम है। जब सबको जमा करें तो कॉमन नाम जो इसमें वो अल-हय्युल क़य्यूम है, तो हो सकता है अल-हय्युल क़य्यूम में इसमें आजम हो। हम अगर कभी भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला के इन नामों के साथ मांगेंगे, इंशाल्लाह कबूलियत के चांसेस ज्यादा होंगे। نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل। इसने तुम पर ये किताब नाजिल की है जो हक लेकर आई है और इन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील को नाजिल कर चुका है। नोट कीजिएगा, इससे पहले नाजिल कर चुका है। मिन कब्ल हुदल लिन्नासि व अनज़ल अल फुरकान, और इसने अब वो मेयार यानी वो क्राइटेरियन यानी कसवटी नाजिल कर दी जो हक और बातिल का फर्क बयान करने लिए। इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे हमारे बच्चे भी कह सकते हैं और आपका भी दिल करता होगा कि कभी हम बाइबल कोई सोच से तो पढ़ें कि उनकी किताबें क्या कहती हैं। तो याद रखिए कि जो आज की बाइबल है वो तौरात और इंजील का मजमुआ है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आज के दौर में बल्कि इवन हर साल उसमें चेंज होती जा रही हैं। अगर मुझे और आपको शौक है कि हम इंजील पढ़ें या तौरात पढ़ें, कुरान में मौजूद है। सूरत मायदा में आप देखेंगे तौरात की बहुत सारी आयतें, तो जो ठीक बातें थी ऑथेंटिक थिंग्स थी तौरात की और इंजील की, अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल कर दी। और कुरान को इसीलिए तो फिर कहा कि ये कसौटी है यानी हक और बातिल को परखने की। अब जो लोग अल्लाह के अहकामात को कबूल करने से इनकार करेंगे, इनको यकीनन सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह ताला बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। यहाँ मैं एक हल्की सी बात की तरफ इशारा करूंगी कि बास दफा हम मुसलमान अपने बच्चों को कुछ ऐसे प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं जहाँ उनके रिलीजन की तालीम सिखाई जाती है। अब होता क्या है कि जिस तरह हम अपना इस्लामिक स्कूल जैसे ये इल्म अकेडमी है, तो यहाँ इस्लामिक तालीम दी जा रही है। जब आप अपने बच्चों को किसी स्पेशल स्कूल में पब्लिक स्कूल से निकाल के डालते हैं तो वहां उनको एजुकेशन देते हैं, और एजुकेशन के नाम पे वो अपनी क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं। मैंने एक जगह एक हमारी स्टूडेंट थी, तो उनसे जब ये बात सुनी को उनका क्वेश्चन था, तो मेरे तो कान खड़े हो गए कि इनका एक पीरियड है जिसमें वो इनको क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं। मैंने कहा कि क्या आपका बच्चा कुरान पढ़ चुका है? क्या उसको हदीस आती है? वो कुछ नहीं आता। कच्चे कागज पे जब आप उनके बातें लिख देंगे और वो कहने को तो वो प्रॉफिट्स की बातें पढ़ाते हैं, और जो पढ़े तो अल्लाह की बना जिसमें उन्होंने नबियों का जिना भी साबित किया हुआ, उनका शराब पीना भी साबित किया हुआ, और उनका अपनी बेटियों से बदकारी करना भी साबित किया गया। इनकी तो हिस्ट्री में ये मौजूद है कि इन्होंने हर दीन की बात करने वाले की किरदार कुशी की ताकि एक दीन वालों पे हम तनकीद करें और लोग हम पे नजर ना रखें। तो याद रखिए, एक क्राइटेरियन अपने लिए रखें, इवन आप सब भी। आप पढ़ें तो रात इंजील कब पढ़ें? जब एक दफा कुरान पढ़ चुके हैं। आपके बच्चे को स्कूल तो आपने दिया संडे या सैटरडे का, जिसमें हफ्ते में एक ही दिन सिर्फ आपने उसको दीन सिखा दिया। अब जब स्कूल में 5 दिन वो अपने सब्जेक्ट के नाते से ये पढ़ेगा, तो आप सोचिए कि रंग किसका गालिब होगा। आज जो नस्लों में पोल्यूशन आ रहा है और जो सोच डाइवर्ट हो रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह कि हक तो दिया नहीं तो बातिल सामने आ गया। करें क्या? आप माओं पे फर्ज है, यानी अगर आप चाहती है ना कि एक नई खेती तैयार हो, हम सब इस साल अल्लाह से ये दुआएं मांग के उठेंगे कि अल्लाह हमारी ही कोखों से हमारी ही नस्लों से वो बच्चे पैदा हों जिन्होंने दुनिया में इस्लाम का गलबा लाना है। तो उसके लिए आपको और मुझे पैदा होने से लेकर मुख्तलिफ उम्र के और अदवार के नाते से बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, और 15 से 18 साल यानी जिस उम्र में आपको शिनाख्ती कार्ड मिलता है या ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है या लीगली आप उससे पहले शादी नहीं कर सकते, उस उम्र को हद बना लीजिए कि आपने जिस तरह कम अज कम इस लेवल पे जिस लेवल पे इस वक्त आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपने अपने एक एक बच्चे के साथ बैठकर इस तरह से कुरान उनको सिखाना है। घर में फैमिली टाइम रखें। आजकल से ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे? देखिए, आजकल आप सबको एक रिकमेंडेशन दूंगी कि माशाल्लाह रोजे हैं, बच्चे भी रखते हैं, छुट्टियां भी हैं, बहुत सारों के घरों के मर्द भी मगरिब से पहले आते हैं, और चूंकि दिन लंबा है तो मगरिब लेट हो रही है, 7:30 से 8 बजे का टाइम, आधा घंटा, या 7:30 से 8 नहीं तो चले 8 से 8:30 कर लें, हाफ एन आवर आप स्टडी टाइम बनाएं। खाना पहले बना लें, जो खजूर पानी, और मैंने देखा है कि माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे लोग मस्जिदों में इफ्तारी करते हैं, वेरी गुड, आप मस्जिदों वालों से बात करें, आधा पौना घंटा वहां रखें, सूरत फतेह से लेकर रोज थोड़ा सा खुलासा। अगर आप इसमें कोई रिकॉर्डिंग चाहते हैं इंग्लिश की, उर्दू की, किसी भी चीज की, आप रब्ता करें, हम आपको कई चीजें दिखाने को तैयार है। किसी से बात कर लें जिनकी बात करने का वाकई लोगों को असर है, तो आप अपने बच्चों को इस महीने में इस तरह का एक छोटा सा दौरा कुरान करा दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे वो कम अज कम ये तो फील करेंगे ना कि हमारी माएं जो सीख रही हैं वो कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है। फिर इसके बाद जब वो अपना दीन सीखते हैं, फिर दुनिया में कहीं भी जाएंगे अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। हजरत यूसुफ का किस्सा हम पढ़ेंगे आगे जाके, बिल्कुल बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड, जैसे आप कह लीजिए कि 10-12 साल की उम्र से पहले बाप से जुदा हो गए, अब ना बाप पास है ना माँ पास है, और उधर एक औरत गंदगी की तरफ बुलाती है, लेकिन रुक गए। किस चीज का असर था? बाप की तालीमात का असर था। अगर हम अपने बच्चों के बारे में क्यूरियस हैं, दुआएं करते हैं, कोशिश करते हैं, आपके बच्चे दुनिया के किसी मुल्क में रहें, किसी बुरे से बुरे माहौल में जाए, उनको रंग नहीं चढ़ेगा। मसला क्या होता है कि अपना रंग दिया नहीं होता, दूसरों के रंगों में छोड़कर बिल्कुल बेनियाज हो जाते हैं, कार्टूनों से बच्चों पर रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ खुद वो कार्टून एक नजर देख लिया करें जो आपके बच्चे, मासूम बच्चे देखते हैं, और मैं हैरान होती हूँ वो माँ कि बच्चे को लगा के कैसे देती है। नबियों का मजाक, हजरत मूसा को फ्रॉक पहने हुए वो दिखाते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो आम बड़ी फिल्मों में होता है, सिर्फ वो किरदार बदले होते हैं। आप कभी सोचे तो सही किस तरह से हम अपने बच्चों को इस चीज के लिए फेंक देते हैं जबकि हमारी वो इतनी कीमती दौलत है। डायमंड्स हम अपने लॉकर्स में रखे, गोल्ड हमारा बैंकों में है, और कीमती चीजें हमने छुपा के रखी हुई हैं, और सोने चांदी हीरे मोतियों से कीमती औलादें हमारी इस तरह गैरों में बाहर फिर रही हो और हमें परवाह ही नहीं। हम बस इस पे ही बहुत खुश हैं कि चले वो कुछ कर तो रहे हैं ना, उनको इंग्लिश तो बोलनी आ गई, कुछ भी करें वो सब है, लेकिन जो माँ बाप शऊर रखते हैं उनके बच्चे नहीं बिगड़ते। इसी मुल्क में मैंने ऐसे ऐसे आइडियल घराने देखे हैं कि उनके बच्चों को देखकर दिल करता कि प्यार करो। इतने डिसेंट, इतने मुहज्जब, 5 वक्त के मस्जिद के नमाजी, उनकी किरत मिशारी की खैरत से जोड़ के देख लीजिए, सुदई से देखें, क्योंकि माँ बाप बाशऊर है। तो आपके उनको कहीं भेजने या जाने से बात नहीं बनेगी, और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, जिस एज तक अभी हमने उनको कुरान भी नहीं पूरा कराया होता, नमाज की भी अहमियत नहीं, अगर उनकी वापसी का वक्त आ गया, अगर उनकी रुख्सती उस तरफ चल पड़ी आपके घर से रुख्सत होने से पहले, तो क्या जवाब देंगे? क्या वो बच्चे कल क्यामत के दिन हमारे गिरेबान नहीं पकड़ेंगे? अल्लाह ताला हमें अपनी नस्लों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाए, जमीनों आसमान की कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं, यानी इस वक्त जो आपके दिल के अंदर जो मद्दो जजर है, जो टाइड्स आ रही हैं, अल्लाह को वो भी पता है। वही तो है जो तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता बना, आपकी मेरी सूरत अल्लाह का फैसला है। कभी अपनी सूरत को बुरा ना कहें और किसी की शक्ल के सहर में ना मुबतला हो। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। आज तो इतना ब्यूटी कॉन्शियस हो गए कि बच्ची का रंग जरा सा दबाओ तो माँ परेशान हो जाती कि इसका रिश्ता कहाँ से आएगा। याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने शक्लें बनाई हैं, और अगर शक्लों से नसीब बनते हैं तो फिर हर खूबसूरत लड़की बहुत ही राज करती है, और जो बाप भी शक्ल की औरतें उनके तो घर कभी ना बनते। हालांकि अमूमन इसे ऑपोजिट ही देखा गया, इल्ला माशाल्लाह। तो शक्लो सूरत को कभी डिस्कस ना करें। हमारे कल्चर में ये भी एक प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा हो तो शक्ल की बात करेंगे, शादी होगी तो दुल्हन कैसी लग रही है, और अब तो हद ये हो गई कि फौतगी के वक्त भी शक्लों पे बातें होती हैं, किसके चेहरे पे नूर था किस पे नहीं था। तो कभी ना करें, और ब्यूटी कॉन्शियस भी नहीं होना, कई कई घंटे मशीनों में रहना और पार्लर्स पे रहना उम्मत वसत को सूट नहीं करता। वंस अ व्हाइल इट्स ओके, ईद का मौका है, अपने आप को मेंटेन रखना और बात है, लेकिन हर वक्त इस गम में, कभी आप अपने फीचर्स बदल रहे हैं, कभी आप अपने फिगर को चेंज कर रहे हैं, सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ आप अपने आप को एक बुत बना के पूछना चाहते हैं तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हदीस में आता है कि जन्नत की औरत इतनी हसीन और जमील होगी कि जब वो शरबत पिएगी तो उसके जिस्म में से ऐसे झलकेगा जैसे क्रिस्टल को सुर्ख डोरी में से पिरो दो। तो खूबसूरती वहां बहुत मिल जाएगी। हम इधर कितने भी खूबसूरत हो जाएं लेकिन अल्लाह की निगाहों में हमारा कोई मुकाम ना हो तो शक्ल कुछ नहीं होती। ये पूछिए कि अल्लाह को हमारी शक्ल कैसी लगती है। इस जबरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और जात नहीं, वही अल्लाह है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की, यदि तुम्हें भी वो बना रहा है तो इस किताब को भी वही भेज रहा है। मिन हुआ आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, इस किताब में दो तरह की आयात है, एक है हुक्म वाली जो किताब की असल बुनियाद है, और वह उखरा मुतशाबिहात, और दूसरी शुबे वाली है जिसके अंदर शुबा पड़ जाता है जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है। होगा क्या, यहां समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने इस किताब में ना सिर्फ ये कि इस दुनिया के हालात बताए हैं, थिंग्स टू डू करो, कैसे नमाज पढ़ो, रोजे रखो, बल्कि हमें आखिरत की भी बातें बताई हैं, जन्नत की चीजें, जहन्नम की चीजें, गैब के मामले। तो जब दो मुख्तलिफ जहानों को इस किताब में डिस्कस करना था तो आयतें भी दो तरह की है। वो आयतें सीधी सादी जिसमें आपके लिए मेरे लिए कोई डूज है या डोंट्स है, कोई हुक्म है उस पर गौर कीजिए, वो है असल उम्मुल किताब। इसके बरक्स जन्नत में क्या होगा, अल्लाह का हाथ कैसा है, और सिदरतुल मुंतहा पे क्या हुआ था, और अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा कि नहीं, और जिब्राइल कैसे थे, इससे मेरा और आपका क्या है। तो अमल की बात अल्लाह ने बता दी कि हुक्म वाली बातों पे गौर करो, लेकिन अब देखिएगा अगले हिस्से में दो तरह के लोग हैं। कुछ को अमल करना होता है वो तो सीधा सीधा हुक्म वाली आयतें लेंगे कि शुक्र अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हम चलने लगे, लेकिन कुछ दूसरे जिनको अमल नहीं करना, जो फरार चाहते हैं, दे वॉन्ट एस्केपिज्म, वो क्या करते हैं, वो शुबे की बातों में रहेंगे। अच्छा साहब, काब के कुत्ते कितने थे, अच्छा जी वो किस रंग के थे, और वो किधर गए, और दुनिया में चांद किधर है और सूरज किधर जाता है। आज इंटेलेक्चुअली इस तरह से मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है कुरान को कि अमल को पीछे से पीछे कर दो और दूसरी तरफ अपने आप को पीछे रखो। तो अल्लाह ताला कहते हैं फअम्मल लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु, बस वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ है, किस चीज का टेढ़ है, अमल नहीं करना चाहते, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं, और इनको मानी पहनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इनका सही मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसके खिलाफ जो लोग इल्म में पुख्ताकार हैं, इसको हाईलाइट कीजिए, रासिखूना फिल इल्म, रसूख उर्दू में भी बोलते हैं, यानी बहुत खूबसूरत तरीके से अपने आप को बेहतरीन तरीके से इस तरह से लेकर चलना कि जिसको आप इस तरह इमेजिन कीजिए कि पुख्तगी लाना। मतलब देखिए कि आम तालीम सब ले लेते हैं, MBBS सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बाद स्पेशलाइज करते हैं, और वो स्पेशलाइजेशन किसकी होती है, किसी की एनाटॉमी में हो गई, किसी की न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। तो यही चीज यहां बता के अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप इन चीजों को देखें। यहाँ एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि इल्म के दर्जे होते हैं। नया नया इल्म आता है ना, थोड़ा इल्म आता है तो आप में सख्ती आएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे नया कपड़ा होता है। नया कपड़ा आप पहनते हैं ना, आपको चुभता भी है, बोझ भी लगता है, परेशान भी होता है, लेकिन आप खुश हैं कि बस चल रहा है तो चल रहा है। इसके बरक्स जितना इल्म पुराना होगा, इल्म ब्लेंडेड होता है, फिर आप में सॉफ्टनेस आती है, फिर नरमी आती है, फिर आपको दीन का असल हुसन दिखता है। इसीलिए मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग शुरू में पहली दफा में कुरान सीख रहे होते हैं ना, उनको हर चीज अपने अंदर नेगेटिव दिखती है, ये भी गलत, ये भी हराम, ये भी वो, दिस दैट। अब वो इतने परेशान रहते हैं कि वो कहते हैं मैं सुनती नहीं। जिसका अगर ये दिल चाहे ना कि मैं सुनती नहीं हूं, तो वो इस आयत को समझ ले कि जरा सा सब्र कर लीजिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जो बीमारी वो सिम्टम बताएगा, आपको लगेगा ये मेरे अंदर भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके टेस्ट होते हैं, रिजल्ट आते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बीमारी नहीं। तो जब हम नया नया कुरान सुनने बैठते हैं ना, जैसे आप बैठे हुए हमें से बहुत सारे लोग, तो हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो डोंट वरी, थोड़ा सा अपने आपको टाइम दें, स्टेप लीजिए। अल्लाह को पता है आप नए हैं, अल्लाह को पता है आपके बेबी स्टेप्स हैं। अभी बच्चा पहले खड़ा होता है, फिर चलता है, कई दफा गिरता है, फिर भागने लग जाता है। तो दीन के ऊपर अमल में भी इंसान को हमेशा तरतीब बेहतरीन रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सुस्त हो जाए। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, और हम तो माशाल्लाह बहुत मुस्लिम हैं। आज हम अपने ऊपर रख के देखिए तो हम में से तो कोई भी न्यू मुस्लिम नहीं है। एक न्यू मुस्लिम दीन के बारे में गौर करे, सोचे, तो बात समझ आती है। उसको नमाज की आदत नहीं, वो अलार्म लगा रहा है, बात समझ आती है। लेकिन एक मुसलमान घर में पैदा होने वाला बच्चा, उसको अगर दीन पे अमल करना मुश्किल लगे, तो फिर वही बात है कि बच्चा बड़ा तो हो रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इल्म का भी रसूख दे और अमल का भी। ऐसे लोगों का कॉल क्या होता है, वो कहते हैं हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से, यानी बहसों में नहीं पड़ते। हुक्म वाली आयतें हों या शुबे वाली आयतें हों या जन्नत की बातें या गैब की, वो कहते हैं हमें ये पता है कि पूरे का पूरा कुरान रब ने नाजिल किया। और सच ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं, वो अल्लाह से दुआ करते हैं। अब ये देखिए पहली दुआ आ गई है इस वक्त, और हम सब पढ़ेंगे इसको, रब्बना ला तुज़िग़ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। अब इस दुआ को दिल में रखिए कि वाकई ये दुआ मैंने मांगनी है। तो इसका तर्जमा सुनिएगा, वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है, तो फिर हमारे दिलों को टेढ़ा न करना, हमें अपने खजाने फैज से रहमत अता फरमा, क्योंकि तू ही हकीकी तौर पे देने वाला है। कितने लोगों के दिल की ये पुकार है कि अल्लाह बड़ी मुश्किल से कुरान की तरफ कदम लगे, कब से दुआ मांग रहे थे एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह भी कुरान हमारे लिए एक फर्स्ट स्टेप बन गया, अब इससे कदम ना हिलाना, अभी तो तीसरी सीढ़ी पे, अल्लाह तीसवीं पे भी लेके जाना। इस शऊर से इस दुआ को खुद से याद करें, मांगे कि अल्लाह मेरा ये सफर पूरा हो, कोई चीज मुझे यहां आने से ना रोके, क्योंकि सुनना हिदायत की तरफ पहला कदम है। देखिए आप डॉक्टर कब बनेंगे, जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे, 4-5 साल लगेंगे, फिर हाउस जॉब होगी, फिर क्या कुछ होगा, घर बैठ के तो कभी डॉक्टर नहीं बना। आप कुरान को घर बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन हिदायत कब मिलती है, जब सबके साथ मिलते हैं। आप अपने आप को पेश करते हैं कि मुझे स्टूडेंट बनाओ, जितनी देर से आप यहाँ बैठे हैं बगैर सेलफोन चेक किए और सांस रोक के बैठे हैं, अकेले में हम कभी ऐसे ना बैठते। घरों से जो सुनते हैं वो पता नहीं कितना अपना मन मार के बैठते हैं। और आप एक चीज नोट कीजिएगा, जो आप में से पहले घरों में सुनते थे, आज यहाँ आकर सुन रहे हैं, यहाँ आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। मुझे तो रोज ये फील होता है कि 1 घंटा जल्दी घड़ी खत्म हो गई, और आप अकेले होंगे तो बहुत थकेंगे। तो मजलिस की एक बरकत होती है, रहमत होती है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे महरूम ना करना। फिर अगला हिस्सा है दुआ का, रब्बना इन्नका जामिउन्नासी लियौमिल्ला रोइबा फी ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے رب, یعنی اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے, جب یہ حصہ یاد رہتا ہے تو ہدایت بڑی قیمتی لگتی ہے. آپ اس سفر میں ہدایت کی دعائیں مانگ لیں کہ اللہ مجھے ہدایت لینی ہے, تو سونا دے, چاندی دے, بچے دے, شادی میری ہو نہ ہو, میرا شوہر مجھ سے پیار کرے نہ کرے, یہ سب سیکنڈری ہے, لیکن میں نے اس سال تجھ سے ہدایت لے کے جانی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اور دل اتنی جلدی بدلتے ہیں اللہ کی بنا. وہ لوگ جو کل تک لوگوں کو ہدایت پہ بلانے والے ہوتے ہیں, وہ خود ہدایت کی پٹری سے ہٹ جاتے ہیں. بعض دفعہ نیویگیٹر بھی آپ کو مس ڈائریکٹ کر دیتا ہے اگر آپ نے ڈائریکشن ٹھیک نہ ڈالی ہو. آپ اس کے مطابق پہنچ چکے ہیں لیکن آپ کی وہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے کوڈ غلط ڈالا, نام غلط ڈالا. اسی طرح یاد رکھیں, ہدایت کا سفر بڑا سلپری ہے. یہاں بندہ بار بار بھٹکتا ہے, اس میں بار بار بہت ساری روڈز دکھتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس دن کے آنے سے پہلے تو ہمیں ہدایت پہ رکھنا, کہ پروردگار یقیناً تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, تو ہر کس اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. پچھلے پارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ فی سبیل اللہ ایک لگاؤ گے تو 700 دانے لوگے. یہ اللہ کے راستے میں لگانے کا اجر ہے. کفر اور کفرانہ کاموں پہ لگانے والوں کا کام کیا, سب راکھ بن جائے گا, کیونکہ دنیا میں بھی اندھیرے تھے, آخرت کے بھی اندھیرے ہیں. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا, کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا, اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرداز ماہ ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا چنک دیا آپ کو اور مجھے بدر کا. اس کا اصل لطف ہم لیں گے سورۃ انفال میں. ابھی اس سورۃ آل عمران کے جو فورتھ پارے کے اندر حصہ شروع ہوگا, یعنی اینڈنگ پارٹ آف سورۃ آل عمران غزوہ احد کی ڈیٹیلز بتاتا ہے, لیکن سورۃ الانفال جو ہے وہ غزوہ بدر کے, اور یہ سورت نازل اس دور ہمیں اشارہ کر کے اللہ نے یہ بتا دیا, مسلمہ حالات کتنے بھی ایڈورس کیوں نہ ہو, دشمن کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, ان کے پاس جدید ویپنز کیوں نہ ہو, ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو, تمہارے گھر میں انہوں نے اپنے سی آئی ڈیز کیوں نہ لگا رکھے ہو, اگر اللہ تمہارا ساتھ دے گا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا, تم غالب ہو گے. اللہ امت مسلمہ کا موریل بلند کر رہا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ وہ جنگ تھی کہ مسلمانوں سے 2 times more دشمن تھے. مسلمان 313 تھے تو ادھر 1000 تھے, اور مسلمان جیتے. آج ویسٹرن ہسٹورین جو ہے وہ اس بات پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں ہے کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح کیسے ہوئی. ادھر اتنی جدید ہتھیار, تلواریں, اونٹ اور گھوڑے, اور ادھر ٹوٹی ہوئی تلواریں. لکڑی کی تلوار تھی اکاشا کے ہاتھ میں جس سے جا کے دشمن کو مارا, اور وہ چمکتی ہوئی تلوار میں بدل گئی. کیوں؟ واللہ یعیدہ بنصرہ من یشاء. تو یہ دعا کرے کہ اس وقت اللہ فیصلہ کر لے ہماری مدد کا. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. فرشتوں سے اللہ نے کمی پوری کر دی, کیا اللہ آج فرشتے نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے, لیکن سبق میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ابھی ہم ہیں نہیں. کسی نے کمنٹ کسی سے پوچھا کہ تم بڑے فخر کرتے ہو کہ بھائی مسلمانوں کے لیے تو اللہ فرشتے بھیجتا ہے, یہ اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ فلاں فلاں کئی جنگوں کے نام کوئی بھی لیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ بھائی میرے کہ فرشتے آئے تو تھے لیکن ان کو کہیں مسلمان ہی نہیں دکھے, تو وہ واپس چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا نقطہ ہے. اب اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے. آپ کا میرا ایک کمزور نقطہ کہہ لیجئے یا ویک پوائنٹ, کے بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم نیا نیا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم منافق ہیں, فاسق ہیں, متقی ہیں یا کافر ہیں. کافر تو اللہ کے حکم سے ہم خود کو نہیں سمجھتے, لیکن بعض دفعہ فکر لگ جاتی ہے کیا کریں, پھر کپڑے نہ پہنیں, پھر گھر نہ بنائیں, پھر گاڑی اچھی نہ لیں. تو آئیے اس آیت کو پڑھ کے اس پہ ہلکی سی بات کریں گے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ मुकंतरोति मिन अज़हब वल फिद्दा, लोगों के लिए नफ्स की रगबत वाली चीजें यानी औरतें, मुराद बीवियां हैं, औलाद, सोने चांदी के ढेर और चीदा घोड़े यानी चुने हुए ब्रांडेड घोड़े और मवेशी और जरई जमीने बड़ी खुशाइन बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के समान है। हकीकत में बेहतर जो ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कुल औनबियुकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, कह दीजिए क्या मैं ना तुमको बताऊं इनसे भी ज्यादा अच्छी चीजें? वो लोग जो तकवा की रविश इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां इन्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियां इनकी रफीक होंगी और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे और अल्लाह अपने बंदों के रवैयों पर गहरी नजर रखता है। ये दो आयतें हमें दुनिया और आखरत का खूबसूरत कैच दिखाती हैं। आप देखिए कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जुजीना मैंने डाली है मोहब्बत, ये घर माल औलाद जो चीजें आप सुन रहे थे इसकी मोहब्बत अल्लाह ने डाली, ये फितरी है। सवाल पैदा होता है कि डाली क्यों, मुश्किल में डाल दिया, घर से इतनी मोहब्बत है कुरान पढ़ने को दिल ही नहीं करता, खाने पीने से इतनी मोहब्बत है नमाज कजा होती है। तो पहली बात यह है कि अल्लाह ने ये मोहब्बतें क्यों डाली, ताकि हमारा इम्तिहान हो। सोचिए कि आपको मोहब्बत ही नहीं माल से, तो उसको अल्लाह के रास्ते में देने का अजर क्यों मिले? अजर तो तभी होता है ना जब हम उस चीज को अपने दिल पे हाथ रखते हैं। आपको अपने कपड़ों से प्यार ही नहीं तो आप किसी को भी दे दें कोई फिक्र ही नहीं है, आपको अपनी गाड़ी से कोई मोहब्बत नहीं वो गाड़ी कहीं भी चली जाए कोई फिक्र ही नहीं, तो अल्लाह ने आजमाइश के लिए डाली। दूसरी बात है कि इन चीजों की मोहब्बत डाल के आखरत का एक तारुफ दिया, दीज थिंग्स आर इंट्रोडक्शन ऑफ द हेयर आफ्टर, कि देखो ये दुनिया का घर गाड़ी ये तो एक छोटा सा सिंबल है, असल में जो जन्नत में तुम्हें मिलने वाला है कुल औनबियुकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम वो कितना खूबसूरत होगा। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम चलाने के लिए रखा। आप इमेजिन कीजिए अपने हस्बैंड को या अपने बाप को जो जिस एज में भी आप मौजूद हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं अक्सर लोग। चलिए आज के दौर में यहाँ हम देखते हैं तो मर्दों की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगती, ऑफिस जॉब है, बड़ा अच्छा ऑफिस जमा हुआ है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, बाज़ दफा घर से भी करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, पाकिस्तान को और इंडिया को जहन में लाइए, रेड़ी चलाने वाले को देखिए, सड़कें कूटने वालों को देखिए, गाड़ियों में, रिक्शों में, टांगों में बैठ के ऑफिस में जाने वालों को देखिए, मेहनत करते हैं ना। आप मुझे बताइए कि अगर इन चीजों से मोहब्बत ही ना होती तो कोई मर्द इतनी मेहनत करता? वो कहेगा जाओ भाड़ में जिधर मर्जी जाओ। माँ, आप जैसी माएं जो सारा खून अपना निचोड़ देती हैं अपने घर और बच्चों के लिए, दिन रात उनके लिए तड़पती हैं, अगर आपको अपने बच्चे से मोहब्बत ना होती तो आप ये करती? आज भी आप देखिए जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं वो कुछ नहीं करते, बच्चे सामने रो रहे हैं वो बैठे देखते हैं टुकर टुकर, ये तो डिप्रेशन है कि बंदे का कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तो फिर सवाल पैदा होता है ये डाल तो दी, अब हम इसको मैनेज कैसे करें? तो याद रखिए, दुनिया जब दिल से बाहर और हाथों में रहती है तो फायदा देती है, और जब दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाती है तो नुकसान देती है। इस एनालॉजी को मौलाना रूमी उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक फारसी की मिसाल दी है। वो कहते हैं कि पानी कश्ती के बाहर रहे तो कश्ती की जिंदगी है, लेकिन जरा सा पानी बढ़ा दें तो वो उसी कश्ती को डुबो देगा। बात वाज़े, कश्ती क्या है? आखरत, मेरी आपकी जन्नत, और ये दुनिया क्या? उसका पानी। आपके मेरे पास जितना भी पानी है ये हमारी आखरत को निभाने के लिए, ये हमारी आखरत के लिए चप्पू है। अगर पानी ना होगा तो कश्तियां कहाँ चलेंगी? जिसको जितनी दुनिया मिली उतनी आखरत की बुलंदियां ले ले। आपका घर है माशाल्लाह, आपको अल्लाह ने दिए, हलाल है, आपके मियाँ की मेहनत की कमाई है। खुले घर के बारे में हदीस में आता है कि ये अल्लाह की नेमत है, दिल में कोई रियाकारी नहीं, बड़ाई नहीं, किसी के मुकाबले पे नहीं, जलाने के लिए नहीं, ये आपके लिए रहमत है। देखिए बहुत सारे लोग हिसाब और अजाब का फर्क नहीं कर पाते, हिसाब और चीज है, अजाब और चीज है। हिसाब तो होगा, अजाब जरूरी नहीं हो। अल्लाह पूछेगा बताओ कहाँ से लिया था, चेक करो फरिश्तों, जाके जरा इसकी पेपर वर्क चेक करके आओ, सब ठीक था, इसकी कमाई ठीक थी, वेरी गुड, चलो जी ये घर तो क्लियर हुआ, फरिश्तों इसका जाने दो ये माल आगे, जैसे एयरपोर्ट पे होता है। करें क्या इन घरों में, करते क्या है? असल इश्यू ये है, आज उम्मत मुस्लिमा को अगर ये सबक पढ़ा दिया जाए कि घर भी रखो गाड़ियां भी रखो लेकिन इनका इस्तेमाल अच्छा रखो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा चेंज आएगी। इसके बरक्स आज से कोई 20 25 50 साल पीछे की तबलीग के घर रखना हराम, कुफर, गाड़ी खत्म। अब वो क्या सोचते हैं लोग, उफ मौलवी साहब की बात सुनेंगे ना तो घर भी इनको ही देके जाना पड़ेगा, चाबी गाड़ी की इधर दे दो, खुद बाय रिक्शे में करो और बस टुम टुम करो। और क्या जहन में आ गया तस्वुर में कि बस जो गरीब लोग हैं वो सीधे जन्नत में जाएंगे और अमीर लोग जो वो जहन्नुम में जाएंगे। याद रखिए ये मिसकॉन्सेप्शन है, दैट द बैड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। ऐसा नहीं है, इस्लाम अगर माल को पसंद ना करता तो ये 1/3 ऑफ नॉलेज क्यों माल के बारे में रखता, क्यों कहा जकात दो अगर आपके पास माल है ही नहीं, तो जकात का हुक्म क्यों आया? कर्ज देने लेने प्लजिंग घर खरीदने के तरीके क्यों सिखाए? इतना बड़ा टॉपिक है कुरान में नबी सल्लम के हदीस को अगर आप जमा करें तो तिजारत के बाब, मजाद के बाब और इसी तरह खेती बाड़ी के मामले सबसे बिग मैटर्स मनी के। तो आपको एक ही बात अल्लाह कह देता, खबरदार अगर रात का खाना भी तुम्हारे घर में हुआ। मसला कहाँ बिगड़ता है? जब हम वो वाकयात सुनते हैं सहाबा से मुतल्लिक और नेक लोगों की बातें में कि वो शाम का खाना भी नहीं रखते थे। इसको भी समझिए, अब जो बात कहने लगी उसको गौर से सुनिएगा, फिर बात पूरी समझ आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसने अपने घर के ऊपर एक और फालतू कमरा बना लिया, उसका घर दूसरों से बड़ा हो गया। अब वो तो खुश है, अल्लाह के नबी उधर से गुजरे, कहा ये किसका घर है? तो लोगों ने कहा फलां का। आपने कहा इसको क्या जरूरत थी इसकी, यदि आपने नागवारी का इजहार किया, दैट्स इट, आप वहां से गुजर गए। अब क्या हुआ बाद में, जो भी नेबर्स थे वो आए, उन्होंने बताया तुम्हें पता है अल्लाह के नबी गुजरे थे और उन्होंने पसंद नहीं किया तेरे इस दूसरे कमरे को, फालतू है। तो उसने कहा अच्छा, फौरन उसने कुदाल लिया और उसको गिराना शुरू कर दिया। पूछा भी नहीं जाके अल्लाह के नबी हुआ क्या, कहा जिस चीज से अल्लाह के नबी ने इस तरह फील किया इसका मतलब कि उसमें कोई गलती होगी। उसको गिरा गिरू के जब गए, असल कहानी क्या खुली कि इस वक्त इस्लाम को एक एक पैनी की जरूरत है। इस वक्त मदीना दुश्मनों से घिरा हुआ है, अभी नई रियासत है, अभी मुसलमानों के सिस्टम्स बनने हैं और तू अपनी जात पे पैसे लगा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। जब इस्लाम को जरूरत पड़े इंशाल्लाह हमारे घर बिकेंगे, जब इस्लाम को जरूरत पड़ेगी हमारी गाड़ियां बिकेंगी, हमारा बैंक बैलेंस जाएगा तो इस्लाम की मदद होगी। इस नियत से आप लेकर रखें इंशाल्लाह, ये आपके एसेट्स हैं। एक है अपनी जात पे, चलो एक बच्चे का घर ले लिया, अब उसका मुस्तकबिल समझ जाए उसका, ये आपकी जात है। और इस्लाम रो रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, परेशान है। चौथा पारा आप सुनेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि ये टॉपिक क्यों चुना गया, यानी मुझे तो लगता है कि रुलाने वाला पारा आने वाला आ गया हमारे पास, कि जब इस्लाम मना नहीं करता लेकिन ये जुर्म है कि आपके पास हजारों लाखों हैं और इस्लाम पे बातें पड़ी और आप लोगों को इस्लाम नहीं पहुंचा रहे। फिर याद रखिए कि इंतजार इसका नहीं करना कि दुश्मन आ जाए तो हम अपने घर बेच के हथियार खरीदें। जरूरत आज उम्मत बसत को इस बात की है कि हम आज अमन के दौर में इल्म को आम करें, ये किताबें, ये दीन इस्लाम मुसलमानों को भी पहुंचाएं और काफिरों को पहुंचाएं। ये कर रहे हैं, खुद भी खाइए, अल्लाह भी खुश होता है। अल्लाह कहता है खुद भी खाओ, मेहमान को भी खिलाओ, नौकरों को भी खिलाओ, जो मर्जी खाएं, आप पिज्जा खाएं, आप बर्गर खाएं, कुलू मिन तैयिबाती बात ही। तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे इंशाल्लाह कोई चीज नुकसान नहीं देगी। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि इस्लाम आज गरीब है और मुसलमान अमीर है। लिख लें ये जुमला, आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा जो जवाल है उसकी वजह क्या है, आज मुसलमान अमीर है, इस्लाम गरीब है। आप इस मुल्क और इस शहर की मस्जिदों को छोड़ दें, अभी ये तो अल्लाह ने चला दी जैसे भी चल रही है माशाल्लाह। आप अमूमी तौर पे देखें जो हमारे दीनी इदारों की हालत है, जो मस्जिदों की हालत है और जो हमारे घर है, आज भी आप देखें कि वो गलियां जहां से गाड़ी नहीं गुजरती उसके अंदर इतना बड़ा बंगला आपको दिखेगा, ये जुर्म है। अबू बकर ने अपना घर बनाया हुआ था तभी तो तबूक के मौके पर सामान उठाकर ले आए थे ना। तो मैं और आप इस नीयत से खरीदें चीजें, नंबर एक फजूल खर्ची नहीं करनी, हराम में तो पढ़ना ही नहीं, इस वक्त हराम की तो हम बातें ही नहीं कर रहे, सब कुछ हलाल जायज कमाई का रखे। अल्लाह से कि अल्लाह अभी तो मैं इसको यूज कर रही हूं, जिसकी जरूरत पड़ी ये आपका है, अल्लाह ये घर मेरा, ये कमरा मेरे सोने का, ये खाना पकाने का, और अल्लाह बाकी सारा घर तेरा। फिर आप प्लान्स बनाए कैसे अपने घरों में खैर आए, कैसे हमारी गाड़ियों का रुख मस्जिदों में हो। दिन में गाड़ी 6 दफा बाहर निकलती है, कभी मॉल में जाती है, कभी जॉब पे जाते हैं, तो 5 दफा कम अज कम मस्जिद की तरफ जरूर जाए। अगर आपकी गैस का खर्चा अगर $1,000 है तो उसमें से कम अज कम $300-400 आपका अल्लाह के रास्तों में हो, फिर कोई हर्ज नहीं। यही क्राइटेरियन आप दुनिया की हर चीज पे ले लीजिए तो इंशाल्लाह ये सब चीजें आपके लिए रहमत है। कि अल्लाह ने मुसलमानों को तरसने के लिए भेजा, असल में मुसलमान के दिल में नहीं होती दुनिया, चाहत नहीं होती, हिरस नहीं होती, तड़प नहीं होती। तो अल्लाह ताला यही बात कह रहे हैं कुल नबीकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, चलो कुफार तो बना ले, उनके लिए तो दुनिया है, तुम्हारे लिए तो अल्लाह से जाके बैठा हुआ है। जिसके लिए जन्नत में घर बने हो क्या उसको दुनिया में छोटी छोटी चीजों की तौफीक ऐसी होगी? तो अल्लाह ताला कहता है जिसको ये हकीकत समझ आ जाती है फिर उसकी जुबान पे एक दुआ है, आइए हम सब दोहराते हैं, आयत 16 के अंदर है, रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अब तर्जमा सुनिएगा, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए। आज कौन सा ईमान हम लेके आए हैं, कोई नया ईमान था जी? हर दिन हमारे ईमान के रंग बदल रहे हैं। एक वो ईमान था जो पैदा होते से शुरू से ला इलाहा इल्लल्लाह वाला था, एक शौरी ईमान आ रहा है, अभी तीसरी सीढ़ी पे है। मैं कह सकती हूँ कि तीन चार तबक तुम्हारे रोशन हो चुके होंगे अंदर से कि ये शऊर है, अच्छा ये अल्लाह चाहता है, ये अल्लाह की मर्जी है। तो जब रस्मी रिवाजी ईमान से शौरी ईमान पे आते हैं, यानी एक होता है खानदान का ईमान जो फैमिली में तरीक़ेकार चल रहा था, एक वो है जो शऊर के साथ अपने इरादे के साथ आता है, तो ये एक डिस्कवरी होती है। तो हम यहाँ अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह हमें दुनिया की हकीकत आज समझ आ गई है, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतिशे दोजख से बचा ले। फरमाए ये लोग हैं सब्र करने वाले। कौन सा सब्र है? दुनिया से सब्र, कनात, थोड़े पे रहना, थोड़े पे अपने आप को रखना, अपनी जात पे जाया नहीं करना, इस्तेमाल करना है, और एक्स्ट्रा सब कुछ रब का। हम कहते हैं 100 में से 250, आउट ऑफ 100 2.5। अगर ईमान वाले की डिक्शनरी देखेंगे तो वो अपोजिट कहेगा, बंदा कहेगा अल्लाह मैंने आज $100 कमाए हैं, लेट सी आई विल थिंक इट $2.50 इज एनफ फॉर मी, आई विल बाय $1 की ब्रेड ले लूंगा, 50p की मैं कोई जैम ले लूंगा, $1 का कोई दूध ले लूंगा, इट्स एनफ फॉर मी, 97.5 आपके। देखिए अल्लाह कह सकता था ऐसा कि नहीं? क्या लॉ ये नहीं बन सकता था कि तुम उसमें इतना ले लो बाकी सारा मेरे नाम पे दो? अल्लाह चाहता तो कर सकता था, क्योंकि अल्लाह ही माफिस समावाती है, सब ओरिजिनली उसका। लेकिन उसने कहा क्यों नहीं कि तुम अपनी खुशी से करो, मैंने तुम्हें 2.5 पे रखा है, अब इसको 2 की बजाय तुम 20.5 कर दो, तुम इसको 50.5 कर दो, इट्स अप टू यू, और जो तुम करोगे ये अल्लज़ीना युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह होगा। तो अल्लाह चाहता है मैं फोर्स करके क्यों लूँ तुमसे? आप भी देखिए खैरत हमारे अंदर भी होती है, हम किसी को कहते हैं हम फोर्स करके आपसे नहीं लेंगे, आपकी खुशी है आप जो करें। आप किसी के घर जाएं, कोई आपको बुलाए तो फोर्स करते हैं ये पकाना, नहीं कहते ना, आप कहते हैं जो आपका दिल करता है, आपकी खुशी है, जितना आपको खुशी है जो आप कर सकते हैं। अल्लाह मेरे और आपसे ये चाहता है, लीस्ट मैंने तुमको दे दिया है, अगला तुम खुद ले लो। हम जब लीस्ट को भी मुश्किल समझें, डोरियों का वजन काटें, नगों का वजन काटें, नए सोने पुराने का अच्छा बताएं, हाय इतनी ज़कात, और अल्लाह रहम करे जब डॉलर्स को हम अपनी पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी से मल्टीप्लाई करें चीहे निकल जाए, हाय इतनी ज़कात है भाई, जरा वो 97.5 को भी तो मल्टीप्लाई कीजिए अमेरिकन और पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी से, फिर आपको खुद ही लग जाएगा कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है। तो डोंट बी स्टिंजी, जब अल्लाह को खुले हाथों से देंगे खुले हाथों से मिलेगा, गिन गिन के देते हैं ना तो गिन गिन के मिलता है। आज इबादत भी गिन के करते हैं, उंगलियों पे पढ़ते, गुटलियों पे पढ़ते, नमाजें नफले गिन के पढ़ते, अल्लाह हमें बेहिसाब देता है। अगर सूरज की रोशनी को नापें तो गिन सकते हैं, बारिश जब पड़ती है उसके कतरों को गिन सकते हैं, जितने सुबह से लेके अभी तक सांस लिया उसको गिन सकते हैं, पलकें झपकी गिन सकते हैं, अल्लाह तो नहीं आपसे काउंटिंग करता। तो हम क्यों अल्लाह के साथ इतने छोटे छोटे हिसाब करते हैं कंजूसियों वाले? खुले दिल से अल्लाह के बन के देखिए, फिर देखिए जिस तरह आप देंगे ना, जो ही वो मनी की मोहब्बत का क्लॉट आपके मेरे दिल से निकलेगा ना, तो इतना अल्लाह देगा आप संभाल ही नहीं सकेंगे। हदीस में आता है जब बंदा दुनिया की हिरस रखता है तो दुनिया उससे दूर भागती है, और जब वो दुनिया को पीछे करके अल्लाह के दीन को फैलाता है तो फिर अल्लाह उसको क्या देता है। मैं एक छोटी सी मिसाल से ये बात समझाना चाहूंगी, क्योंकि आयतें इसी से मुतल्लिक है। आप देखिए कि आप बैठी हैं और आपके पास आपका बच्चा भी है छोटा सा, आपकी डोर बेल होती है और दो खवातीन आती हैं आपके सामने, बेचारी देखने में गरीब लगती हैं, आप उनको बुलाती हैं अंदर बिठाती हैं। अब उसमें से एक औरत के वो आपके उस बच्चे को देखने लग जाती है, फौरन उसको टेक केयर करती है, प्यार करती है, उसको संभालती है। दूसरी माँ बैठ के आपको कहती है बाजी कुछ दे दो, बाजी दे दो, पैसे दे दो, ये कर दो, यानी शी इज बैगिंग, वो मांग रही है आपसे, भीख मांग रही है। अच्छा आप मुझे बताइए कि जो बैगिंग कर रही है वो आपसे मांग रही है, और दूसरी तरफ आप मुसलसल देख रहे हैं ये दूसरी कितनी अच्छी है, देखो झाड़ू भी फेरने लग गई, बच्चे को खिला रही, नहलाने लाओ मैं इसको नहला दूं, आप मुझे बताइए आपसे कोई पूछे तो आप किसको खुशी से देंगे? मांगने वाली को मेरा ले, आप दो चार डॉलर देके कहेंगे अच्छा जाओ बाजी माफ करो, उसको पकड़ेंगे इधर आओ खाना खाओ, इधर आओ तुम तो बहुत अच्छी बेबी सिटर, आओ दिस एंड दैट, आपके बच्चे को उसने प्यार किया, उसको टेक केयर किया, आप उसको ज्यादा देंगे, बल्कि उसको रख ही लेंगे अपने पास, उसकी जॉब पक्की। अब आप ले लीजिए, आपका घर इस्लाम का घर है, वो दो आने वाली खवातीन कौन है? दुनिया के दो लोग हैं, एक आपके बच्चे को, और बच्चा क्या यहाँ दीन इस्लाम। हमेशा जो लोग मेरे साथ कई साल से सुन रहे हो उनको तो ये मिसाल रट गई होगी कि आज उम्मते मुस्लिमा को जो काम करना है इस इस्लाम को, दीन इस्लाम को अपना न्यू बॉर्न बेबी बना ले, दैट्स इट। ये सूरह आले इमरान का मेन थीम भी इस्लाम है, चौथे पारे में आपको इसका रंग ज्यादा दिखेगा, इस्लाम को अपना न्यू बॉर्न बेबी समझें, ठीक है? जो लोग इस्लाम को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस्लाम को फैला रहे हैं, जो दी, और इस्लाम के अंदर कुरान भी है, नमाज भी है, सब कुछ है, अब जो लोग अल्लाह के दीन के कामों में लग जाते हैं अल्लाह उनको ज्यादा देगा, जो हर वक्त दुआएं मांगते हैं अल्लाह ये दे दे, घर दे दे, कोठी दे दे, अल्लाह उनको भी देता है, लेकिन अल्लाह कहता है जाओ लेके फारिग हो जाओ, लेकिन जो अल्लाह के काम करेगा अल्लाह उसको देगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसका बन जाता है। और मैंने देखा है कि जो लोग सिर्फ दीन को सर्व करने के लिए आते हैं ना, वो आखिरी खून का कतरा भी निचोड़ देते हैं, फिर भी रो के जाते हैं, माफिया मांग के जाते हैं कि सॉरी वी डिडंट डू गुड, हमने सही नहीं किया। और जो किसी जाती फायदे के लिए आएगा वो जरा से फायदे के लिए आएगा, उससे बड़ा फायदा मिलेगा उससे चला जाएगा। तो ये अगर मैं और आप बात समझ गया आज, तो आप देखिए कि हमने उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल की तरफ एक हल्की सी खिड़की खोल दी है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सबसे पहले मुझे खुद इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, और सिर्फ यही नहीं करना, इस सबर के बाद अब कुछ अमल भी है। और ये सारा कुछ जो मैंने कहा ना, ये कब होगा, जब हमारी अपनी करेक्टर बिल्डिंग होगी। ये वन सवाल नहीं है, ये ऐसे सडनली ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा। उसके लिए क्या वह सादिकीन अवल कानतीन अवल मुनफिकीन अवल मुस्तगफिरीन बिल असखार, पैकेज है पूरा, यू नीड टू टेक दिस होल पैकेज। कैसे, ये सच्चे लोग हैं, फरमाबरदार हैं और फयास हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मगफरत की दुआएं मांगा करते हैं। ये काम करेगी उम्मत मुस्लिमा तो फिर अल्लाह देखिए उनको आसमान से भी देगा और जमीन से भी देगा। हम अपने पिछले गुनाहों पे माफियां मांगे, आजिज बने, फयाज हो, और रातों को अल्लाह से ताल्लुक जोड़े कि अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह तेरे नबी की उम्मत इस वक्त ठोकरों में आई, तस्बीह के टूटे हुए दाने जो पाँव में आके लोगों के कदमों में जाते, क्या ये उम्मत इस काबिल थी। सोचिए आप अपना तारुफ देखिए, हम देखिए कुछ लोग होते हैं बड़े आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं ना, नवाबों की औलाद है या खानदान है, कभी अल्लाह ने करे हालात के उतार चढ़ाव में आकर उनको थपेड़े पड़े तो उनको ये एहसास नहीं जीने देता कि हम क्या थे और क्या हो गए। मैं और आप अगर अपने माजी में एक नजर ढाल के देखें तो यकीन करें बाहर भी आंसू गिरेंगे अंदर भी गिरेंगे। हम बेताज बादशाह थे एक वक्त था इस दुनिया में, जैसे आज वेस्ट से सूरज तरक्की का निकलता है, हर नई इन्वेंशन आज वेस्ट में है, हर नई सलाहियत आपको यहां से दिखेगी, ये सब इस्लाम के साथ था। लेकिन जब हम सुस्त हो गए, जब हमने ये सब छोड़ दिया, तो उसका नुकसान क्या हुआ, क्या आज उम्मत पे रात आ गई, फौत नहीं हुई उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक पर्दा पड़ा हुआ है। इस कुरान की रोशनी में इसके नूर को आम करके हमने इस पर्दे को चाक करना है, तो अल्लाह ताला फिर देखिए कितनी प्यारी तसल्ली देते हैं, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, गवाही दी अल्लाह ने खुद इस बात की कि इसके सिवा कोई खुदा नहीं। हाईलाइट करें, मैं इसका एक ठेठ तर्जमा करूं, शायद आप इसको इतनी जल्दी समझ ना पाए हो। अल्लाह ने खुद कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है इसका तर्जमा। मैं और आप जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह कहता है मैं तो खुद ये गवाही देता हूं कि मैं ही इलाह हूं, इतनी बड़ी जात है वो। और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी। यहां इल्म वालों का नाम हाईलाइट करें, पूरे कुरान में कोई एक आयत भी ना होती ना इल्म की फजीलत की तो ये आयत काफी थी। ये आपकी बात है, अल्लाह ने यहां अपने और फरिश्तों के नाम के साथ इल्म वालों का नाम लिया। और आज उम्मत मुस्लिमा उस इल्म से कितनी गोरी है, 3 सेकंड तक गौर करें, अपनी उम्र लिखें और पूछें। देखिए यहां इल्म है जो मार्फत का इल्म है, जो कुरान और हदीस का इल्म है, दुनिया के इल्म भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या इस इल्म के लिए मैंने आज तक कुर्बानी दी। जितना मैंने दुनियावी इल्म के लिए वक्त लगाया कि इतना मैंने दीन के इल्म के लिए वक्त लगाया, जितनी उसके लिए कुर्बानी दी कि इतनी इसके लिए दी, जितना वक्त उधर लगाया इधर लगाया, जितनी मनी उधर लगी इधर लगाई, मैं कहती हूँ दीन की तालीम इतनी महंगी होनी चाहिए कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी इतनी फीस ना हो जितनी दीन की हो, लेकिन रख नहीं सकते, कर नहीं सकते कि फिर तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाए। फ्री मिल जाए तो बड़ी बात है, वो लोग लेना ना पसंद करें, कहाँ आए 5 रुपए भी दे दें तो लोगों को वो भी चुप सकते हैं, बड़ी बड़ी फीसें दूसरी जगह लोग देंगे, लेकिन अगर आप इस दीन का मोरल और इस दीन का प्रोटोकॉल देखें तो मैं कहती हूँ हजारों नहीं लाखों में फीस होनी चाहिए एक क्लास की। दीन सीखने सिखाने वाले और उसमें हेल्प करने वालों को नो वन कैन पे, उनके पास है ही कुछ नहीं कि लोगों को दें, वो खाली हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई आपको हिदायत के रास्ते पे ले आए। देखिए कोई मरते मरते आपकी कभी जिंदगी में जान बचाने का जरिया बनाओ तो आप सारी जिंदगी उस बंदे को नहीं भूलते, इसने एन वक्त पे बचा लिया तो मैं बच गई, इसने मेरे बच्चे को डूबने से बचा लिया तो जो गुमराहियों और जहालतों और सबसे बड़े अंधेरे जहन्नुम में गिरने से कोई किताब आपको मुझे बचाए, क्या मैं और आप उसका हक दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं सब इल्म वाले भी इसकी गवाही देते हैं। इल्म असल में आपको अल्लाह की मार्फत देता है। आज तक हमने इबादत की है, تسبیح نمازیں پڑھی، آیت کریمیں پڑھے، میلاد کیے، ختم کیے، اور کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا، وہ صرف عبادت تھی. دیٹ واز اونلی ورشپ ریچول. جب بھی آپ نے قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا، اس دن اصل میں آپ نے اپنے آپ کو علم والوں میں ڈالا، آپ کی عزت بلند ہو گئی، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک علم کے راستوں پہ رکھے. اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے اوپر لے کے سوچتی ہوں. میں گھر سے نکلی ہوں نا آج آپ کو پڑھانے کے لیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے موت آ جائے، یا تو میری یہ موت شہادت کی موت. حدیث میں آتا ہے جب کوئی علم کے راستوں میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور اگر راستے میں اس کو موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے. اور کیا چاہیے، ہے کیا ہمارے عمل میں؟ اتنا دنیاوی علم کی آج دھوم ہے. آج کے دور کا امت مسلمہ کو جو ڈی ٹریک کرنے والا راستہ تھا نا، وہ آج کے دور میں وہی تھا کہ جس نے دوسروں کو بھی ڈالا تھا اور ہم بھی اس میں پھنس گئے. اور وہ کیا تھا؟ دنیا کا علم. پیدا ہوتے ہی فکر لگ جاتا ہے. بعض جگہ تو میں نے سنا کہ ایسے ایسے اسکول ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے وہاں جا کے نام لکھاتی ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو اس کو آپ کے اسکول میں ڈالنا ہے، کیونکہ 5 سال پہلے نام لکھانا پڑتا ہے. یہ دھوم ہے، تو دین کی دھوم کتنی ہے؟ میں کہتی ہوں دین کی جگہ تل رکھنے کی جگہ نہ ہو. اس کے لیے تو لوگ چل کے، پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل تڑپ تڑپ کے آئیں تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ علم ہے جس کے ساتھ ہمارے دین کا آغاز ہوا تھا. اقرا باسم ربی کا، پڑھو رب کے نام کے ساتھ. الذی خلق، تو اس رب کے نام کو اگر ہم بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں علم کا رسوخ دے. رسوخ، پھر وہی بات، گہرا سوراخ کرنا، اندر گھس جائے. اور جو قرآن کے علم سے رسوخ آتا ہے، اتنا آسان. کئی بچیاں جب اپنا کورس چھوڑ کے 1 سال کے کورس میں آتی ہیں علمی میں، تو وہ کہتی ہیں ہم تو سوچ رہے تھے یہ بہت مشکل کورس ہوگا، بٹ اٹس ویری سمپل. اس میں تو بس ہمارا دل پگھلتا ہے. نو ٹو مچ ہوم ورک، نہ کوئی اسائنمنٹ اتنے لمبے چوڑے، ان کو بہت تھوڑے لگتے ہیں. ہاں ہاؤس وائف جب آتی ہیں ان کو مشکل لگتا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ یوز ٹو نہیں ہے. تو جو بچے صبح سے شام تک 6-6, 8-8 گھنٹے دنیا کے کالج اور یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں، ان کو یہ کورس کچھ مشکل نہیں لگتے. میں اپنے اوپر لے کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ صبح گھر سے جب آؤں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کسل مندی ہو، طبیعت پہ کوئی بوجھ ہو، لیکن جب میں یہاں سے جاتی ہوں، بیسٹ ٹائم وہ ہوتا ہے جس وقت کلاس ختم ہونے والی ہوتی ہے. اور اگر مجھے یہ مینجمنٹ کا اور آپ کا ڈر نہ ہو تو میں تو کبھی نہ چھوڑوں وقت پہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے اب تو مجھے بات سمجھ ہے. اتنی انرجی ملتی ہے، کوئی پیاس، کوئی بھوک، کوئی تھکن ہے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کہ یہ انرجی دیتا ہے. یہ انرجی ڈرنک ہے مسلمز کا. ہماری نسلوں کو اگر آپ نے یہ علم دے دیا، یہ چیزیں دے دی، دیکھیں یہ گھوڑوں کی طرح بھاگیں گے. یہ جب ان کو سستی کے مارے اٹھو نماز پڑھ لو، اٹھو چلو جاؤ مسجد جاؤ، وجہ کیا کہ پیچھے سے وہ فیول نہیں دیا. کسی گاڑی کو بغیر گیس کے جلائیں گے تو یہی حالات ہوں گے. تو دعا کیجئے کہ ہمارے گھروں میں علم کا دور دورہ ہو جائے. فرمایا وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی ذات نہیں، اور اسی کا ایک فیصلہ ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے. یہاں سے اب اسلام کا موضوع سورۃ آل عمران میں شروع ہو رہا ہے، جو اینڈ تک چلے گا.